कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढू कहाँ, तुम्हें खोजू कहाँ, तुम्हें ढूंढू कहाँ, तुम्हें खोजू कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरी डगर है, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।
परिचय सुनते सुनते हमें अपना ही जीवन अचानक याद आया। सोच के हम कुछ और आए थे, पर यहां बैठे बैठे अचानक कुछ और सुनाने की प्रेरणा आ रही है। किसी सूफी संत ने लिखा है, हे प्रभु, मैं 40 वर्ष तक तुझे खोज रहा था, अब जाकर तू मिला है। मैं ये सोचता था कि मैं तुमको ढूंढ रहा हूं, पर अब जब तू मिल गया है तो पता चला मैं तुझे नहीं खोज रहा था, तुम मुझे खोज रहे थे। ऐसा ही कुछ हम सब के साथ होते रहता है। जिस चीज को हम खोज रहे होते हैं, वास्तव में वो चीज हमें खोज रही होती है। जीवन का रहस्य क्या है? टॉपिक ये है, परंतु कुछ और सुनाने की इच्छा हो रही है। शायद वो रहस्य इसमें समाया हुआ होगा, या फिर यहां बैठे आप सब शायद किसी एक का संकल्प होगा जो हमें ये प्रेरणा आज दे रहा है। हम 16 वर्ष के थे, 16 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी, एग्जाम पूरी हो गई, छुट्टियां चालू हो गई और हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम डॉक्टर बने। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे, महाराष्ट्र में एक एक्स्ट्रा एग्जाम होती है सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज की, ऑटोनोमस बॉडी की, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा गांधीयन थॉट्स एक सब्जेक्ट होता है। तो हमारे पिताजी हमारे लिए वो किताबें लेके आ गए और हमने पढ़ना चालू किया। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, द टॉप सीक्रेट इज, शायद हमको लगता है यहीं से हमें समझ आया। एक किताब उसमें थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, और वो किताब हमने पढ़ना चालू की क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम देनी थी, उसमें पास होना था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ चुके थे पर ये सब्जेक्ट नया था, इसको नहीं पढ़ा था। और वो किताब पढ़ते पढ़ते हम मौन में चले गए, टोटल साइलेंस। एकांत में यदि कुछ पढ़ा जाए तो उसका असर सीधा भीतर होता है, और लेखक ने जो कुछ लिखा उसमें हमें लगा ये हमारे जीवन में हो रहा है। लेखक लिखता है कि मैंने झूठ बोला, फिर पश्चाताप किया, स्मोकिंग की पश्चाताप किया, नॉनवेज खाया पश्चाताप किया। हमको लगा ये हमारे साथ हमने ही किया है। और वो किताब पढ़ते 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 सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे टोटल साइलेंस आ गया। इतना गहरा वो साइलेंस था कि अगले 6 मास तक हमने किसी से कुछ भी बात नहीं की, टोटल साइलेंस। वो किताब पढ़ रहे थे और साथ में एक दूसरी किताब हमको मिली, लव ऑफ गॉड, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी की, फटी पुरानी किताब घर पर पड़ी थी और वो किताब हमने पढ़ना चालू की। और ये दो किताबें और मौन, जो जीवन का रास्ता संसार की ओर जा रहा था सीधा मुड़ गया अध्यात्म की ओर, और प्रश्न चालू हो गए मुझे क्या करना है। लव ऑफ गॉड किताब में लिखा था कि परमात्म प्रेम जो है वो ऐसा है तीर की तरह मेरे हृदय में चुभा है, द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव, आई कैनॉट स्टॉप, आई एम द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट एंड द ग्रूम इज हियर। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि पढ़ते 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 मौन हो गए, चुपी हो गए। वो चुप ऐसा चुप हो गए कि हमारे घर वाले पिताजी को चिंता हो गई, ये अचानक इसने बोलना क्यों बंद कर दिया, ये अब तक इतनी मस्ती करता था अब एकदम शांत कैसे हो गया, इतना चुप कैसे हो गया। दे वर रियली वरीड। अब इतने सालों बाद हम पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो वो जो मौन था, वो मौन इस आध्यात्मिक जीवन की नींव थी। उस बीच 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया, घर में खुशियां, मिठाइयां बटने लगी। पीसीबी पीसीएम दो ग्रुप होते थे उस समय, 95% 97%, परंतु रिजल्ट आते आते हम इस संसार से जैसे उपराम हो चुके थे, डिटैच्ड। हाथ में किताब थी, हम पढ़ रहे थे और वो रिजल्ट आ गया और सब लोग खुशियां मना रहे, परंतु मनुष्य के स्वभाव का एक सीक्रेट हमने तब जाना। खुशियां तो थी पर साथ में दुखी भी थे। दुखी इसलिए थे कि ग्रुप्स में तो अच्छे मार्क थे परंतु मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, इसलिए वो दुखी थे। हमने एक रहस्य जाना कि मनुष्य को कुछ भी मिल जाए वो सुखी कभी होता ही नहीं है। उसे कितने भी सुख मिल जाए, कितनी भी प्राप्तियां हो जाए, कुछ भी आ जाए रिजल्ट में, दुखी ही रहता है भीतर से। और फिर उसी मौन में धीरे धीरे बोलना चालू किया, पर बहुत कम। और फिर घर वालों ने ही डिसीजन ले लिया कि इसको MBBS में डालना है। सारी प्रोसीजर हुई, पर तब तक हम इतने डिटैच थे माइंड से ठीक है। एडमिशन कराने गए नागपुर GMC IGMC, इतना बड़ा हॉल था, एडमिशन प्रोसेस चालू थी। हम वहां से निकल गए, इधर उधर घूमने लगे, हॉस्पिटल में घुसे, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक एक बेड पर दो दो तीन तीन पेशेंट्स, इतना दुख, इतनी पीड़ा, और आंसू आ गए। और वहीं पर हमने संकल्प किया, अभी हम डॉक्टर बने नहीं है, कि यदि इस जीवन में हम डॉक्टर बनते हैं तो अपना संपूर्ण जीवन द लॉस्ट द लोवेस्ट द लोवलीएस्ट, जो दुखी है, जो अनाथ है, जिनका कोई भी नहीं है, उनके प्रति समर्पित कर देंगे। हमारे पिताजी आए ढूंढते हुए और हमको लेके गए MBBS, एडमिशन हो गई एक दूसरी जगह पर जो हमारे लौकिक घर से थोड़ा दूर था, 2 घंटे की दूरी पर। पूरे 4.5 साल MBBS के एक खोज में हम थे। एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई थी, एक तरफ अध्यात्म था। एक अद्भुत सी शक्ति साथ में काम कर रही थी। जिस मेडिकल कॉलेज में थे वहां जबरदस्त रैगिंग होती थी, पर हर बार हम बचते गए जैसे कोई शक्ति ऊपर है। शाम का समय रहता था और जैसे गीत बजता था, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव मंदिर था, हम चले जाते थे। पूरे 4.5 साल एक खोज थी, व्हाट इज गॉड। वो जो मौन था उसके बाद ये हलचल का पीरियड था। एक इसी समय असंख्य सत्संग सुने, असंख्य संस्थाओं से जुड़े, जो जो दिखता गया वहां वहां जुड़ते गए। एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई और दूसरी तरफ खोज। बाद में हॉस्टल में गए सेकंड ईयर। मोस्ट ऑफ द MBBS की पढ़ाई पीछे कृष्ण ज्ञान मंदिर था, वहीं बैठकर की। हलचल थी भीतर। MBBS पूरा हो गया, सब लोग छुट्टी पर चले गए, जो भी स्टूडेंट्स थे छुट्टियां लग गई, हम नहीं गए क्योंकि कुछ करना था। और फिर और एक सत्संग सुना, राम कथा अलकाश्री जी के द्वारा। फिर से मौन, द सेकंड साइलेंस। वो पहला साइलेंस था, ये सेकंड साइलेंस। निराहार रहकर वो राम कथा सुनी, सुबह का सत्र, शाम का सत्र। और फिर से आध्यात्मिक जागृति हुई कि मुझे क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। वो नहीं है जो मैं कर रहा हूं, मुझे कुछ और करना है। फिर इंटर्नशिप चालू हो गई और भीतर जैसे कुछ दबा हुआ था वो विस्फोट हुआ कि मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है। वो पूरा इंटर्नशिप 1 ईयर हम दिन रात पड़े रहते थे कैजुअलिटी में, वार्ड में, क्योंकि एक चीज हमने जानी थी कि जो जो पेशेंट है वो स्वयं भगवान का ही रूप है। भक्ति का सारा लिटरेचर पढ़ा उसी समय दरिद्र नारायण ड्रेसिंग करते करते आंसू आ जाते थे। सब लोग कहते थे तुम बहुत सिंसियर हो, पर वो हमारी सिंसियरिटी थी नहीं, वो कुछ और था जो भीतर चल रहा था, वो कुछ और छा तो दबा हुआ था और जो अचानक से विस्फोट की तरह बाहर निकल गया। सब लोग पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, हमने की नहीं, टच भी नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। जहां इतना दुख समुदाय है बाहर, हम कैसे बैठे। इंटर्नशिप पूरी हो गई, एमबीबीएस का रिजल्ट आया, हम ओवरऑल टॉपर थे। सबने कहा तुम पीजी करो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो हमने सोचा ठीक है, हम अपने भाई के घर भाई के पास जाएंगे, छोटा भाई जो एमबीबीएस कर रहा था नागपुर में दूसरी जगह, तीनों ही हम डॉक्टर बहन, हम एक साल छोटे और भाई दो साल छोटा, हम उसके कॉलेज में गए, वो सेकंड एमबीबीएस में था, और वहां बैठकर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी चालू की। एक दो मास वहां गए, लाइब्रेरी में बैठकर एमसीक्यू स्टडी किया, और उसी पीरियड में फिर हमारा भटकना चालू हो गया। एक एक दिन एक एक संस्था, एक एक दिन एक एक जगह, इधर उधर उधर, हर दिन श्री राम श्री अरविंदो रमन महर्षि, आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया, विपाशना, नागपुर में बर्डी है वहां ढेर सारी किताबें मिलती है पुरानी सस्ती, रोज एक किताब और पढ़ने लगे। फिर क्रिश्चियन सेंट्स की तरफ गए, सेंट फ्रांसिस, सेंट एसीसी, सेंट डी सेल्स, सेंट बर्नार्ड, और करते करते ये था तीसरा साइलेंस, द थर्ड साइलेंस, और वो साइलेंस सबसे भयंकर था, सबसे भयंकर। और इसी साइलेंस में रियल ग्रोथ होती है। कितना भी सुन लो, कितने भी लेक्चर सुन लो, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, जो आंतरिक क्रांति होती है वो मौन क्रांति है। और अचानक क्रांति हो गई। फिर हम कभी कभी घर जाते थे तो हमारी लौकिक बहन जो थी वो अचानक ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आ गई, वो भी एमबीबीएस एक साल बड़ी। उनके कॉलेज में एक राजयोग का क्लास होता था, उनकी एनाटॉमी की जो प्रोफेसर थी वो क्लास कराती थी, और उस पूरी 50 की बैच में से हमारी बहन थी वो अचानक ज्ञान में आ गई। वो सेंटर पर गई और उसको लगा ये मेरा घर है, और वो तुरंत सारे नियम मर्यादाएं फॉलो करने लगी, और जैसे ही फॉलो करने लगी घर में भयंकर सा हंगामा हो गया। उसने बाहर खाना बंद कर दिया, पिताजी ने सारी ब्रह्मा कुमारी की किताबें फेंक दी, लाइट फेंक दिया, सब कुछ बंद कर दिया, उसका जाना ही बंद करा दिया। और फिर ऐसे समय हम भांते थे, परंतु उसको अजीब सा नशा था एक, वाह मेरे भाग मुझे मिले भगवान। हम उससे कहते थे तुमने भगवान को पा लिया, उसने कहती थी हम हाँ यस। उसको हम शास्त्रों की बातें पूछते थे, उसे कुछ भी नहीं पता, तो हमारा हमेशा झगड़ा होता रहा। फिर हम वापस अपनी जगह गए, पढ़ाई चालू, और पढ़ते पढ़ते फिर भटकने लगे। एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते श्री रामकृष्ण मठ पहुंचे, वहां शाम का भजन चल रहा था, खंडन भव बंधन, और वहां बैठे बैठे एकदम ट्रांस लाइक स्टेट हो गई, हम अशरीरी हो गए, नशा सा छा गया। क्या है, सन्यासी बैठे हुए थे, हम वहां जाके बैठ गए, खंडन भव बंधन वंदी तो माए, छोटा सा समुदाय था पर इतने स्ट्रांग वाइब्रेशंस थे वहां पर कि हम शरीर से ही डिटैच हो गए। वहां बैठे रहे और फिर रोज जाना चालू कर दिया। शाम हो गई कि वहां, और दिन भर अलग अलग जगह पर भटकने लगे, हर दिन नई जगह, हर दिन नई जगह। और उसी रामकृष्ण मठ में उपनिषद थे, धीरे धीरे करके सारे उपनिषद पूरे किए। उसी रामकृष्ण मठ में द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण नाम की एक किताब थी जिसमें इतनी वैराग्य की बातें भरी है, वो पूरी की। और फिर एक दिन संकल्प आया कि हमको विवेकानंद का पूरा पढ़ना है, 8 वॉल्यूम्स। बारिश में गए थे और वो किताबें लेके आई थी, 8 वॉल्यूम्स, 8 खंड, 15 दिन में उसको पूरा किया था। वो पढ़ते पढ़ते लगा था ये जैसे हमें पहले ही पता है, और एक विजन दिखा कि मुझे भी यही काम करना है, इस संसार में प्रभु प्रेम को फैलाना है, इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाना है, यही जीवन का लक्ष्य है। उत्तिष्ठ जागृत, और ये सब एक मौन की अवस्था में हो रहा था। हमारे भाई को लग रहा था हम पढ़ाई कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, पर पढ़ाई छूट गई। असंख्य राम कथाएं सुनी, असंख्य भागवत कथाएं सुनी, असंख्य ज्ञानेश्वरी सुनी उसी पीरियड में। हर दिन एक मंदिर, हर दिन एक संस्था, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, योगादा सत्संग सोसाइटी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, माता अमृतानंदमयी, श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर था, वहां महानुभाव पंथ के लोग थे, उनके साथ गए। उसके पहले इंटर्नशिप में एक जगह गांव में एक 4 महीना पोस्टिंग थी, वहां हैप्पी थॉट्स नाम की एक संस्था थी, उससे जुड़े। उसी गांव में एक ताजुद्दीन बाबा नाम के एक महान संत थे, उनसे जुड़े, फिर निकलकर वापस आए। खोज थी, प्यास थी, और धीरे धीरे सुनते सुनते पढ़ते 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 एक दिन एक सत्संग में बैठे थे, उसमें उस महाराज ने कहा कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और दूसरा वाक्य था जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। बस वो यहां चुप गया। इफ दिस इज द गोल ऑफ लाइफ देन व्हाट आई एम डूइंग। अचानक सब कुछ दिखने लगा। हम भाई के कमरे में थे और वो मौन क्रांति भीतर चल रही थी, मुझे क्या करना है। टू विजन्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमडी पोस्ट ग्रेजुएशन, पेशेंट सेवा, या दूसरा मार्ग, इस संसार को ही छोड़ दो और भगवान की खोज में निकल जाओ। राम चिन्मय मिशन में पहुंचे एक बार, वहां पर सन्यासिनी थी दो, उनको हमने बताया तो उन्होंने कहा यू हैव गॉट लॉट ऑफ मेडिकल वासनाज। पहली बार वो शब्द सुना, तुम्हें बहुत इच्छाएं हैं, ये पेशेंट की सेवा करना, ये करना, ये सब बाधा है अध्यात्म में, ये भी माया है। अध्यात्म तो चालू ही अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा से चालू होता है, वहां से चालू होता है, यू विल गेट ट्रैप्ड। और फिर उसी पीरियड में हमने अपनी ही जीवन कहानी लिखी थी, पूरा बचपन से तब तक का, 21 एज तक का जो कुछ हुआ उन 15 दिनों में मौन में, एक एक डिटेल चीज लिखते गए, जो जो हमें याद आ रहा था। और फिर इतनी बेचैनी, हमें याद है 3 दिन तक, 3 days 3 nights जस्ट क्राइंग, हे कृष्ण कहाँ है। भाई ने कमरा बदला, हॉस्टल से वो प्राइवेट रूम में, भाड़े के रूम में रहने गया। वहां के जो भक्त थे वो सत्य साई बाबा के भक्त थे, वहां के जो घर मालक थे उससे संपर्क आया, उसको स्टडी किया। सत्य साई बाबा स्वप्न में दिखे कभी, जिस घर में वो कमरे में रहता था उसी के बाजू में एक चर्च था। ये सब छोड़ा, फिर चर्च में चालू किया, 3 months ओनली इन चर्च, सुबह का सत्र, शाम का सत्र, कन्फेशन वगैरह वगैरह, फिनिश्ड बाइबल, एवरी लाइन, एवरी वर्स। और ये सब करते करते इतनी वैराग्य आ गया बीच से, अंदर से, कि मुझे करना क्या है अब, व्हाट शुड आई डू, इधर जाऊं या इधर, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। इधर या इधर। और सोचते सोचते उसी मौन में, उसी एकांत में बैठे मन में आया, सुनते इनफ इज इनफ, वैनिटी इज वैनिटी, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए ये संसार का, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर. स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर. मुझे घृणा है दुस्वप्न से. With its sanctified shopkeeping, with its chicanery, with its blackguardism, I don't want this world. I hate marriages. ऐसा वैराग जन्म लिया, एक तरफ प्रभु प्रेम, एक तरफ वैराग और एक तरफ सेवा का भाव. पर सेवा का भाव अब नीचे चला गया. मुझे जीवन के सत्य को जानना है. और फिर हम घर आते थे तो हमारी जो लौकिक बहन थी वो वापस ब्रह्मा कुमारी इसकी बातें हमको बताती थी, पर वो हमको कभी भी ठीक नहीं लगी. यहां तक कि हम एक बार जबरदस्ती उसको एस्कॉन में लेके गए, 7 दिन तक भागवत कथा में बिठाया, पर फिर भी आते समय वो कहती थी कि एक बार सेंटर जाना है. हम नहीं जाते थे, हम बाहर रुकते थे, वो अंदर जाती थी, मुरली कुछ पढ़ के वापस आती थी, हम नहीं गए. एक ही बार गए थे और जैसे ही गए सुना भक्ति है रात, हम वापस. भक्ति को रात कह रहे हैं ये लोग. फिर आए और वो मौन जो था तीसरा, वो इतना गहरा था कि वहीं पर फिर हमने डिसीजन लिया कि हमें इस संसार को छोड़ना है. बट कहां जाऊं, हमने एक लिस्ट बनाई 50 संस्थाओं की और सबसे लास्ट में रखा ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि दूर से देखते थे ब्रह्मा कुमारीज में खाली बहनें हैं, हम क्या करेंगे वहां जाकर. हमें ऐसी जगह जाना है जहां पर आने जाने का काम ना हो अंदर. इसलिए हमने सोचा यहां नहीं जाना है, बाकी सब जगह एक्सप्लोर करो. इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, किधर जाऊं. जाना तो है, ये तो पक्का है, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है. और फिर फाइनल हमने डिसीजन लिया कि हम रामकृष्ण मठ में जाएंगे. पर वहां पर हमने कभी किसी से कोई बात नहीं की, किसी से कुछ पूछा नहीं. वहां चुपचाप जाते थे और चुपचाप आते थे. पर उस पीरियड में ईस्टर्न सेंट, वेस्टर्न सेंट, ईस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स से लेके तो बर्ट्रैंड रसेल, सारे 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 षडशास्त्र, इंडियन फिलॉसफीज, एक एक करके पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए. एंड जीवन का जो रहस्य है, कहने का भाव उसी मौन में ही समझ आया. जब चुप थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे. और फिर एक दिन ये फाइनल कर लिया, हमें जाना है. हमने अपने भाई को बताया कि हम इस संसार को ही छोड़ रहे हैं. वो एकदम से डर गया, उसको लगा हम पढ़ाई कर रहे हैं एंट्रेंस की, मेडिकल की. तो उसने कहा घर पे बता दो एक बार. हमने कहा घर पे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है चुपचाप निकल जाना चाहिए संसार से. ज्यादा हंगामा किया तो ये संसार के लोग जाने नहीं देते. उसी पीरियड में हमारा एंट्रेंस का भी रिजल्ट आ गया. जो एंट्रेंस एग्जाम दी थी मेडिकल की, उसमें भी हमारा एक जगह सिलेक्शन हो गया MD औरंगाबाद. हमने गवर्नमेंट की वो सीट छोड़ दी. MD करूं या भगवान को पाऊं. घर पहुंचे, भाई ने कहा एक बार घर पे बताना, फिर तुमको जहां जाना है वहां जाओ. हम घर गए और जैसे ही डिक्लेयर किया कि मुझे संन्यास लेना है, हमने सोचा था कि घर में विस्फोट होगा, महाविस्फोट की कल्पना नहीं की थी. भयंकर, भयंकर मतलब भयंकर विस्फोट हो गया. इतना भयंकर कि 1.5 महीना तो हम घर पे ही बंद थे. हमको समझाने के लिए लगभग 150 लोग आए, रिश्तेदार, पड़ोसी. कहां जा रहा है तुझे, आए तुझे पासी, इधर ही है सब कुछ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं. सत्यनारायण की पूजाएं हुई, हमारी माताजी गणपति की भक्त थी. इतने हमारे पूरे खानदान में ऐसा संकट आज तक नहीं आया था. तो गणपति को पानी में डुबो के रख दिया. जब तक ये संकट दूर नहीं होगा तब तक वो पानी के भीतर ही रहेगा. इतने बचपन से भक्ति कर रही, ये दिन दिखाने के लिए कितने लोग आए समझाने के लिए. हम चाहते थे कि हमारे अपने माँ बाप है, किसी को नहीं बताएंगे, घर की बात घर पे रहेगी. परंतु इन्होंने फैला दी और लोग रोज आने लगे, कोई आया अपनी बेटी को लेकर आया, ये MBBS कर रही है, तुम दोनों मिलके हॉस्पिटल भी खोलना और वो आश्रम भी खोल देना एक। परंतु हमारी स्थिति ऐसी थी, एक्सेप्ट गॉड एवरीथिंग इज अनरियल, परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सब मिथ्या है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। हमारे पिताजी ने कहा ये किताबें पढ़ी ना, उसका नतीजा है, सारी किताबें हमारी छुपा के रख दी, यहां वहां लेके गए, इसके पास उसके पास, ये करा वो करा, बहुत कुछ करा, पर हम पर कोई असर नहीं। हमने कहा कि हम तभी सुनेंगे यदि कोई सन्यासी आकर हमको कोई कहे तो। तो हमारे पिताजी ने एक ऐसे सन्यासी को ढूंढ के निकाला जो पहले रामकृष्ण मठ में था, वहां से उसको निकाल दिया गया, अब रामकृष्ण मठ के विरोध में प्रचार करता है। ऐसे प्रॉपर व्यक्ति को ढूंढ के निकाला, उसने 3 दिन लगाए हमें कन्विंस करने के लिए, बाकी हार गया और कहा कि तुम सही मार्ग पर हो जाओ। रोना धोना चालू हो गया सबका, पर हम सुनने को तैयार नहीं थे। बाल कटवा लिए, मुझे जाना है मतलब जाना ही है। हमारे पिताजी ने 6 पेजेस का लेटर लिखा था टू अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड बाय रामकृष्ण मठ एंड मिशन, प्लीज हेल्प द हेल्पलेस फादर। माताजी कहती थी पहले बताना चाहिए था, इतना खर्चा ही नहीं करते थे। 3 लड़के हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में, तीनों का अलग अलग जगह पर लोन पर हुआ है, इतने पैसे नहीं थे घर पे, पर मेरिट लिस्ट में थे सभी तीनों भी, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में थे। तो उन्होंने कहा पहले बताना चाहिए था, हमने कहा पहले हमको भी नहीं पता था। और फिर हमने कहा, सब समझाया पर वो सुनने को राजी नहीं थे। हम अपने पिताजी को जबरदस्ती लेके गए रामकृष्ण मठ नागपुर, उन्होंने नहीं सुना। पूना लेके गए, उन्होंने वहां का पानी भी नहीं पिया, रात भर रुके थे। मुंबई लेके गए खार वेस्ट, वहां पर हमारा और हमारे पिताजी का झगड़ा हो गया। हमने कहा हम यहां से हिलेंगे नहीं, पिताजी ने कहा मैं तुमको लेके जाऊंगा। वहां पर एक स्वामी जी, फिर हमारे पिताजी ने वहां के जो हेड ऑफ द मठ थे उनको कहा इसके नाम पर बैंक का लोन है, वो कौन देगा, तुम्हारी संस्था देगी क्या। तब वहां पर एक स्वामी जी थे, उन्होंने कहा वाई यू आर सो एजिटेटेड, इतने उतावले क्यों हो रहे हो, अगर तुम्हारा वैराग्य रियल है तो जाएगा नहीं, उनके पैसे दो और फिर आओ। तब कहीं हम शांत हुए थोड़े, अभी तक शांत होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहां तक हम अपने सारे MBBS के सर्टिफिकेट जलाने को तैयार हो गए थे ताकि वापस ना आना पड़े इस संसार में। कट द ब्रिज, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट, ये 3 नियम है। एक बार उधर चले गए नाव को डुबो दो, एक बार ऊपर चढ़ गए सीढ़ी फेंक दो, एक बार उस पार चले गए कट द ब्रिज। तो फिर तुरंत हमारे, हमने कहा ठीक है मान गए। हमारे पिताजी ने मेडिकल ऑफिसर की ऑर्डर ली, हम वापस आ गए। एक गांव में आए आरवी वर्धा, 6 मास वहां पर जॉब की और जो जो पैसे मिलते गए बैंक में डालते गए। और उस गांव में हम बहुत प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि जो भी आता था वो कहता जो नया डॉक्टर है उसको दिखाना है, पर वो हमारे लिए माया थी एक प्रसिद्धि, क्योंकि हम तो इस संसार को ही छोड़ के जा रहे हैं। और हमारे माता पिता उस गांव में आए फिर हमसे मिलने, वो जो ड्राइवर जो रिक्शा वाला लेके आया वो कहने लगा वो नए डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया, गेट पर पहुंचा यही वो डॉक्टर है, इनका मोह और बढ़ गया अब ये जा रहा है छोड़कर। वहां पर भी इन्होंने फिर सबको बता दिया। तो उस गांव में जो भी मिलता था डॉक्टर साहब रुक जाओ ना हमें बहुत क्रोध आता था, डॉक्टर साहब रुक जाओ ना। और फिर मनुष्य के मन के स्वभाव हम समझते गए धीरे धीरे, ये सब क्या हो रहा है, पर हम नहीं रुके। रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, पूरे पैसे बैंक के चुकतू हो गए, हमारे पिताजी सारे ऑफिसेस में चले गए, रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करो बिकॉज ही इज डिसीविंग मेडिकल प्रोफेशन। हम वहां से निकले, फिर घर आए। घर में हंगामा चालू था। माताजी ने कहा जर तू गेलास, अगर तू गया तो कुएं में कूद जाऊंगी। हमने कहा अभी जाके कूदो। इतना मोह, हमको पता था ये कुछ नहीं करेगी। फिर एक डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने कहा मुझे भी संन्यास लेना था, मैं नहीं ले पाया, तुम जरूर लेना। ये पहला आदमी मिला जो हमारी तरफ थे, सारी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, अकेले। अकेले मीन्स अकेले, जो भी आता था बस लेक्चर ही देता था, तुम भ्रमित हो, ये हो, वो हो, और उनको क्या बताऊं। मराठी में गीत है, नको देवराया अंत आता पाहू, प्राणहा सर्वथा जाहू पाहे, प्राण निकल रहा है शरीर से, हे प्रभु यदि तू मुझे अब ना मिला तो मैं खुद को मार दूंगा। ऐसी वैराग की अवस्था थी जो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। उसने कहा, वो डॉक्टर ने कहा तुम साउथ में जाओ। हम साउथ में गए, एक जगह है नेट्रमपल्ली, पहले वेल्लोर पहुंचे, फिर वहां से वो नेट्रमपल्ली पहुंचे। वहां लोगों को ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश। चार दिन वहां रहे। वहां के स्वामी जी ने कहा तुम एक पहाड़ पर जाओ, वहां पर एक दूसरे स्वामी है, उनसे मिलो, उनसे मिले जो अकेले में एकांत में तपस्या करते हैं। हमने उनसे कहा हमारे पिताजी कहते हैं हमारे कुंडली में होरोस्कोप में तो लिखा ही नहीं है संन्यास, उसमें क्या लिखा है। उन्होंने पूछा, हमने कहा उसमें लिखा है सत्यवादी होगा, तो जाकर अपने पिताजी से बोल दो केवल सन्यासी ही सत्यवादी हो सकता है, गृहस्थी नहीं। पर तुम यहां ज्वाइन मत करो, तुम चेन्नई जाओ। हम चेन्नई गए। उसी बीच हमारी मंत्र दीक्षा भी हुई थी, जब उस मेडिकल ऑफिसर थे बेलूर मठ हावड़ा, कॉमन बुगी में बैठ कर गए थे, कॉमन बुगी में बैठ कर आए थे। पूरे भारत के चारों कोने न्यूज़पेपर नीचे ट्रेन में बैठकर घूमे उस सत्य की खोज में। वहां हमारी मंत्र दीक्षा हुई थी स्वामी रंगनाथानंद के द्वारा। अभी इन्होंने शरीर छोड़ दिया है, जो कि श्री राम विवेकानंद के डायरेक्ट शिष्य थे। फिर वापस आए थे चार महीने बाद, दो तीन दिन बाद वहां से। 40 घंटा जाने को लगा था, 40 घंटा आने को। अभी वापस साउथ में गए, वहां भटके। वहां पर हमारे पिताजी का फिर फोन आया कि जो तुमने जॉब छोड़ दिया है 6 महीने में, वो गवर्नमेंट का बॉन्ड है 2 लाख का, वो 2 लाख दो, फिर जो करना है करो। हमने कहा आप क्या करें। स्वामी गौतमानंद थे, उनसे बात की, जो हेड थे तमिलनाडु के। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट का मिलिट्री में भी बॉन्ड होता है, अब किसी को छोड़ के ही जाना है तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट। हमने अपना बैग सामान सब वहीं रखा और कहा कि हम वापस आ रहे हैं। एक बार वापस आए, हमारा एक फ्रेंड था, वो लॉयर था, उससे मिले, उससे पूछा ये क्या है, क्या जरूरी है क्या गांव में जाके 2 साल गवर्नमेंट जॉब करना। उसने कहा आजकल कोई डॉक्टर नहीं करते, सब तो शहरों में ही है, कौन जाता है। और फिर बस हमने फाइनल कर लिया, अब हमको जाना ही है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और हमारी जो लौकिक बहन थी वो कहती थी तुम्हारा बहुत ही तमो प्रधान संन्यास है। उसको क्या समझाऊं। तो उसने कहा तुम जाओ, पर जाते जाते माउंट आबू होते होते फिर जाना। हमने कहा ठीक है। तो हमने प्लानिंग बनाया, माउंट आबू, फिर पुट्टापर्ती, सत्य साई बाबा, वो एक ही रह गए थे जिनको मिलना बाकी था, बाकी संसार की जितनी संस्थाएं थी, सिखिज्म, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, एक एक करके हर दिन एक एक जगह पर, एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ, एक एक दिन में एक एक किताब पूरी हो जाती थी। रायचंद भाई, जैनिज्म, और विवेकानंद को पढ़ने के बाद एक ब्रॉड एस्पेक्ट आ गया था कि सारे मार्ग एक ही जगह जाते हैं। पर बहन हमारी कहती थी हमारा ही एकमात्र मार्ग है। हम कहते थे यू आर फैनेटिक, कट्टरवादी, तुम्हारी वजह से झगड़े हुए हैं संसार में सारे। वो कहती थी फिर भी हम ही राइट है। हमने कहा अज्ञानी। और ऐसा करते करते फिर हमने कहा ठीक है हम जाएंगे। तो उसने पर उसने कहा आप सेंटर पे चलना पड़ेगा पहले, और उनको बोलना पड़ेगा एक साल से चलता हूं। हमने कहा ये हम नहीं कर सकते, झूठ। वो कहती थी युक्ति युक्त, एक नया शब्द हमको पता चला। हमने कहा ठीक है चलो। तो वो सेंटर पर गए, ये बात है 2003 की नवंबर, और फिर शांतिवन में बड़ा प्रोग्राम था बाबा मिलन 30 नवंबर 2003, ये तारीख थी 24 या 25 नवंबर। हम सेंटर गए, दीदी ने, पुष्पा रानी दीदी थे, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, नागपुर के इंचार्ज ब्रह्मा कुमारीज के, उन्होंने कहा अच्छा, हमारी बहन ने कहा ये मेरा भाई है, इसको मधुबन जाना है। तो दीदी ने कहा अच्छा कब से ज्ञान में हो, हमने कहा एक साल। फिर उन्होंने कहा कौन से सेंटर जाते हो, कौन सा सेंटर, ये तो बहन ने बताया नहीं, हमने कहा अमरावती सेंटर। तो उन्होंने फोन लगाया वहां सीता दीदी, उस दीदी ने कहा ये तो बहन तो आती थी नीलम, ये तो कभी आया ही नहीं। तो हमने कहा हम जहां मेडिकल ऑफिसर थे ना वहां गए थे, और वहां फोन बंद है। तो दीदी देखने लगी अभी क्या करें। फिर दीदी ने कहा अच्छा जाओ, पर कैसे जाओगे, ट्रेन तो रिजर्वेशन हो चुका है, तुम कैसे जाओगे। हमने कहा हमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, पूरा भारत मन में कहा वैसे ही घूमे हैं। हमने कहा ठीक है जाओ। और दूसरे दिन फिर हम ट्रेन में बैठे, फर्स्ट विजिट टू माउंट आबू, और ट्रेन निकल पड़ी। इस बीच में बहुत सारी छोटी छोटी और ढेर सारी घटनाएं हैं, और सोच रहे थे अभी ब्रह्मसूत्र बाकी है, अभी भागवत का 7वां अध्याय बाकी है, अभी ये बाकी है, अभी वो बाकी है, अभी ऐसा बाकी है, अभी वैसा बाकी है, और ये सोचते सोचते माउंट आबू पहुंचे, आबू रोड, आबू रोड से शांतिवन। और जैसे ही शांतिवन देखा है सबने, शांतिवन जो मेन एंट्रेंस गेट है उसमें एंट्री किए, और जैसे ही वो 2 नंबर का गेट, अभी वो 6 नंबर है, जैसे ही उसमें से एंट्री की हमें ऐसा लगा इस स्थान को हमने देखा है, डेजा वू। पर माइंड में एक संकल्प बहुत स्ट्रांग था कि दीज पीपल माइट हिप्नोटाइज मी, इसलिए मुझे इनके प्रभाव में आना नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारीज आर वेरी पावरफुल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट हिप्नोटाइज, कुछ भी हो जाए मैं नहीं उनके प्रभाव में आऊंगा, मेरा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, मुझे जाना ही है, वैनिटी ऑफ वैनिटी, अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार मुझे चाहिए नहीं, आई हेट दिस वर्ल्ड, मुझे केवल और केवल परम सत्य तक पहुंचना है। हमारी उम्र उस समय थी 22 लगभग, और उस एज में वो वैराग ऐसा चरम पर था, चरम, मुझे उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। यहां तक कि हमारा एक दूसरा भाई, कजिन ब्रदर, उसकी मेडिकल में एडमिशन हो गई पेमेंट पे 60 लाख देकर, और हमारे इसलिए मां बाप का दुख और ज्यादा था, इधर फ्री में मिल रहा था, वो छोड़ रहा है ये। पिताजी गए प्रॉक्सी, फिर भी एडमिशन हमने मना कर दिया, हम गए ही नहीं, गवर्नमेंट की सीट छोड़ दी एमडी की। और फिर गेट नंबर 2 में जब घुसे तो हमें लगा हमें पता है, और ऐसा होने लगा कि ये पूरा स्थान ही मुझे पता है। हमने आंखें बंद करके देखा कि अच्छा ये रास्ता शायद इधर जाएगा, इधर ऐसा गोल कुछ होगा, तपस्या धाम, और वो था वहां पर। मैंने लगा ये क्या हो रहा है, जाकर सो गए, 5 लोग थे कमरे में, रात में एक स्वप्न देखा, लक्ष्मी नारायण दिखे, वो जो खड़ा हुआ चित्र है आप देखेंगे कहीं होगा कैंपस में, वो एकदम लाइव दिखा। दूसरे दिन हम उठे और फिर पूरे शांतिवन में भटकते रहे, इधर उधर कहां जाऊं, वो कौन सी पार्टी और कौन हमको लेके आए पता ही नहीं। वो बहन जो आई थी उसको खाली इतना पता था एक डॉक्टर है जो पीछे कॉमन बुगी में है आ रहा है, बाद में वो पार्टी गुम हो गई, वो पार्टी हमें पता नहीं कहां चली गई, और वो बहन कहां चली गई पता नहीं। पूरा शांतिवन अकेले घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, और घूमते घूमते अचानक 7:30 बजे और एक गीत बजा, शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा, गीत सुना है ये सबने, ट्रैफिक कंट्रोल। और जैसे गीत सुना हम रुक गए, और हमको लगा ये क्या है, ये कौन सी अवस्था है, सारे ट्रैफिक कंट्रोल में रुक चुके थे, ये ठाकुर की अवस्था है क्या, रामकृष्ण परमहंस की, भाव समाधि की, सेंट फ्रांसिस की ऐसी अवस्था थी, चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण कृष्ण वाली अवस्था थी, क्या यही भाव समाधि है, इज दिस द स्टेज ऑफ ट्रांस, व्हाट इज दिस। और वो गीत हमको लगा ये गीत को तो हमने हजारों लाखों करोड़ों बार सुना है, वो स्ट्राइक होने लगा, शिव की याद रहेगी तब, शिव की याद रहेगी तब। फिर भी हमने अपने आप को फिर संभाला, नो हिप्नोटिस मेस्मराइजेशन, मुझे तो जाना है, इनके प्रभाव में मैं नहीं आऊंगा। तीन दिन भटकते रहे, वो मिली नहीं पार्टी, लास्ट दिन मिली। वो बहन कहा तुम कहां हो? बहन जी हमने कहा इधर ही है, पर चुप थे, मौन थे। उसको उनको लगा कि हाँ एक बाबा मिलन का मौन होता है, उसका मौन है। और फिर लास्ट 30 तारीख, अभी तो बाबा मिलन होता नहीं, पर एक विशाल गैदरिंग नीचे जमती है शांतिवन में, डायमंड हॉल में, जिन्होंने अनुभव किया है वो बता सकते हैं। अनाउंसमेंट हुई कि 3 बजे गेट खुलेंगे, हम 3 बजे जाकर बैठे और 3 बजे से लेकर 11 बजे तक वहां बैठे रहे। हमारी बहन ने कहा था बाबा आएंगे, भगवान का अवतरण होगा, और वो 3-4 घंटे हम वहां बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, और कंटिन्यूअस आंखों से आंसू 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 आंसू। जो कुछ हमने पढ़ा था वो सब उस स्टेज पर दिखने लगा। तुलसीदास, तुकाराम, एकनाथ, अक्का महादेवी, सब सब सब, विवेकानंद, और सब, और वहां एक ज्योति जैसे प्रकट हुई। फिर भी हमारा संकल्प था हमें यहां से जाना है, हमें संन्यास लेना है क्योंकि भगवान को पाना है। परंतु वहां से हमने देखा गीता के ही महावाक्य सुनाई दे रहे, मया तद्मिदम सर्वम जगत व्यक्ति मूर्तिनाम मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व। मैं हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो मैं हूं। आई वॉज शॉक्ड, हमें पता ही नहीं, पूरे आंसू आंसू आंसू। और वो आवाज ने हमको कहा कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। अगर कोई व्यक्ति, कोई दादी या कोई भी अगर हमको कहता था कि ये सत्य है, हम उसे अस्वीकार कर देते। पूरा वेदांत का ज्ञान भरा हुआ था, अहम ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अहम ब्रह्मस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्व खलविदम ब्रह्म 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 ब्रह्म। और ये क्या अचानक से हो गया? दिस इज द ओनली ट्रूथ, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द बिगिनिंग मिडल एंड द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसे ऐसे वाक्य वहां से सुनाई देने लगे और हम वहां बैठे रहे। वो सभा एंड हो गई, हमको पता ही नहीं, वो भाई आए उठो चेयर उठाने वाले, तब हमको जागृत आया हम कहां हैं। दूसरे दिन ऊपर घुमाने आए माउंट आबू, फर्स्ट एंट्री, पांडवन देखा है सबने, पांडवन गए, हॉस्पिटल के गेट के सामने आए। जब हॉस्पिटल देखा तो हमको याद आया हम डॉक्टर हैं। हम सीधा अंदर गए, हु इज द मेडिकल डायरेक्टर, हमने कहा हमको अभी ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा तुम कौन हो, कौन से सेंटर से? हमारा कोई सेंटर ही नहीं है। हम वापस गए, पूरी पार्टी जो थी, दीदी ने, दीदी को लगा बहुत पुराना कुमार है। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी को तुम वापस ले जाओ, 60 लोग थे, सब बूढ़े बूढ़े, उनके सब सामान भर भर के हम लेके गए। घर पहुंचे, पहली बार नीचे शांतिवन में सोए थे 9 मास के बाद। मदची मीत व्यालो आपुली अपोटी आलो, अपने ही गर्भ से मेरा ही जन्म हुआ, पावा परम विश्रामा। जो प्यास थी वो 4-6 घंटे जो वहां बैठ गए थे और आंसू बह रहे थे, यही है, यही है और यही है। उस आवाज ने हमसे कहा था कि मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और मन शांत हुआ था पहली बार। घर गए, घर में कहा कि सन्यास कैंसल, गणपति पानी से बाहर। पर हमने माता जी से कहा कि हम माउंट आबू जा रहे हैं। उसने कहा जा जा जा, कम से कम डॉक्टर तो रहेगा। तो हम माउंट आबू आ गए 2003 15 नवंबर। 1.5 साल यहां थे ग्लोबल हॉस्पिटल में एज ए MBBS डॉक्टर। और फिर सबने कहा तुम वापस पोस्ट ग्रेजुएशन करो, ये अभी दूसरी स्टोरी पार्ट टू। फिर वापस एंट्रेंस एग्जाम दी, तुरंत पास हो गए। फिर यहां से गए 5 साल 6 मास बाहर रहे, मुंबई अलग अलग जगह पर। उसी बीच में ढेर सारे कोर्सेस किए, क्योंकि अभी जीवन में एक लक्ष्य था कि मुझे वापस यहां जाना है, सेवा करनी है, और विथ मेडिकल नॉलेज। और वो सब करके वापस 10 अक्टूबर 2010 यहां आ गए, और तब से लेकर अब तक यहीं पर है। ये 14 साल हमको यहां पूरे हुए हैं, और इस 14 सालों की ये एक अद्भुत सी यात्रा है। इन 14 सालों में मेडिसिन ओपीडी एक एक दिन में 60-60, 70-70, 100-100 पेशेंट्स रोज, उनके एक अनुभव, मेडिकल के अनुभव, 24 आवर्स ऑन कॉल, ICU, इमरजेंसीज, जूनियर डॉक्टर्स, उनका मैनेजमेंट। पर सबसे महत्वपूर्ण और जो टॉप सीक्रेट है हम कहेंगे, वो है इस आबू का एकांत। यहां पे एक नई प्रोसेस चालू हुई। यहां की जो वादियां है, यहां के जो पहाड़ है, ये हमें बहुत आकर्षित करते हैं। घंटों घंटों हमने इन पहाड़ों के सानिध्य में बिताए हैं। यहां की झील, यहां के झरने, यहां की नदियां, सब कुछ जो कुछ है यहां, उस एकांत में बैठकर ज्ञान का चिंतन करते गए, करते गए, करते गए, समझते गए, अपने आप को देखते गए। एक्चुअली आज हम जिस अचानक आपको जो बता रहे, ये कुछ भी हमारा टॉपिक था ही नहीं बताने का, पर जैसी बहन ने कहा ना, तीव्र खोज थी प्रभु को पाने की, तो ये सारी स्मृतियां एकदम से आ गई। नहीं तो टॉपिक हम दूसरा प्रिपेयर करके आए थे, टॉप सीक्रेट वाला, जैसे लेक्चर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, वो सारा इन इस एकांत में, चिंतन मनन में एक नया पार्ट खुला। इस तरह बोलने का हमने कभी बोला नहीं था कभी, पर देखा जरूर था अपने आप को। उस भाई के कमरे में जब थे तब हमने देखा था, लाखों की सभा हमारे सम्मुख है और हम बोल रहे हैं, पर हमें तब लगा हम वेदांत का संदेश दे रहे हैं लोगों को, ये मन में था। परंतु वो ये संदेश होगा इसकी कोई कल्पना नहीं थी। और बचपन से हम देख रहे थे स्वयं को कि हम पहाड़ों के बीच तपस्या कर रहे हैं, और जैसे ही आबू पहुंचे थे तो ये पहाड़ियां हमको याद आई, यही वो पहाड़ियां हैं जिनको हम बचपन से देख रहे थे। वो सारी स्मृतियां जागृत हो गई। एंड दिस इज द लास्ट स्टेशन, द अल्टीमेट स्टेशन। सारी संस्थाएं संसार की एक तरफ, यही हमारा संघर्ष था। ये सत्य क्या है, किसको मैं पूछूं, कि जिसने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, गीता पढ़ रखी है, भागवत पढ़ रखा है, ज्ञानेश्वरी पढ़ रखी है, सारी वेदांत फिलोसॉफी पढ़ रखी है, सारे ईस्टर्न वेस्टर्न सेंट्स मेडिकल सब सब, ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिला नहीं। परंतु जगदीश भाई जी यहां थे, उनकी बुक्स ने हमें बहुत सहारा दिया, सांत्वना दी और थोड़ा सी राहत मिली, क्योंकि उसमें साइंटिफिक तरीके से ये जो ज्ञान है ये समझाया गया है। क्योंकि हमने तो जब उधर थे, खोज कर रहे थे, एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गए थे, वो बहन जी बैठकर एक भाई को कोर्स करा रही थी। हमने उस बहन जी को पूछा भी तो वो कह रही थी जीसस कहता है गॉड इज लाइट। हमने कहा कहां कहां है बताओ, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट, मैथ्यू में कहा है, ल्यूक में कहा है। उसने कहा दीदी से पूछती हूं, तो हमको लगा हम इससे ज्यादा उलझना नहीं है, हमें खुद सर्च करना पड़ेगा। सर्च करते गए करते गए, और इन पहाड़ों ने, इन एकांत ने, इन मौन ने बहुत सहारा दिया। तो एक पार्ट है प्रभु प्रेम का। दूसरा जो पार्ट है, जो हम कहेंगे टॉप सीक्रेट है, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, जहां ब्रह्मचर्य की शक्ति है वहां तेज है, वहां ओज है, वहां किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, दैट इज द टॉप सीक्रेट। आजकल तो इतनी सारी अलग अलग चैनल्स बन गए हैं, इसके बुक्स बन गई है इसके ऊपर, इवन मैनेजमेंट कोर्सेस में सेलिबसी इज एडवोकेटेड, बिकॉज एक ही विकार है संसार में, काम, वो गिराता है, द टेस्ट ऑफ लस्ट एंड फॉल ऑफ मैन। बस यही हमने सीखा है, ब्रह्मचर्य की शक्ति रगों में, धमनियों में रक्त की तरह बहे, इट्स अ फायर, और वो जब जमा हो जाती है तो अद्भुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, शब्दों में, वाणी में, हर चीज में, एकाग्रता में, हर चीज में। तो तीन ही टॉप सीक्रेट है इस जीवन के। पहला सीक्रेट प्रभु प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय खोज, हु इज ही, आई वॉन्ट टू सर्च हिम। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसको ना पालू, उसको ना समझ लू क्या है वो। सेकेंड ब्रह्मचर्य, और हमने एक तीसरी यात्रा यही आबू में चालू की अपने जीवन की, वो भोजन की यात्रा 2014 में। जब देखा ये बंदर क्या खा रहा है, यहां अनादरा पॉइंट है, देखा इस बंदर में इतनी शक्ति कहां से, वो पत्ते फल खा रहा है, और तभी से हमने रॉ डाइट की यात्रा चालू की। हमने कभी कोई गोली नहीं खाई, कोई मेडिसिन नहीं खाई, दूसरों को देते हैं एज अ डॉक्टर, पर खुद कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धीरे 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 हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारा शरीर केवल फ्रूट्स के लिए बना हुआ है, डिजाइन हुआ है, इसलिए अभी तो कितना समय हो गया, एक्सेप्ट फ्रूट्स आई डोंट टेक एनीथिंग, 100% फ्रूटेरियन। जो भी रिपोर्ट्स कराए सभी नॉर्मल, हीमोग्लोबिन 16, एवरी थ्री मंथ्स ब्लड डोनेशन, एक्सरसाइज 1 आवर, और कोई बीमारी नहीं, नो वेट लॉस, सारे डिटॉक्स हो गया है, कोलॉन इज क्लीन, लाइटनेस बॉडी में, ब्रह्मचर्य अत्यंत सहज, हल्कापन, नींद बहुत कम, ज्यादा आवश्यक नहीं है और तुरंत आती है, पेट की कोई समस्या नहीं, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। पूरा कोविड इरा में सारे सिरोही के पेशेंट्स हमारे पास थे, यहां दिन रात पेशेंट्स, हर 2 घंटे में इमरजेंसी थी, पूरा यहां के सब निवासी, बाकी के सारे, परंतु हमको छींक तक नहीं आई उसमें, और उसी लिए हम सेवा कर सके। उसका भी एक टॉप सीक्रेट है, सात्विक डाइट। सात्विक डाइट की यात्रा चालू होती है नॉनवेज से वेजिटेरियन, वेजिटेरियन से वीगनिज्म, वीगनिज्म से रॉ फूड से फ्रूट्स, लिक्विड्स, ब्रदारियन। एक ये अजीब सी यात्रा है जिसमें हम प्रकृति से जुड़ते हैं, प्राणिक ऊर्जा से जुड़ते हैं, नंगे पांव चलना, सूरज को देखना, प्रकृति से ऊर्जा लेना, शरीर में भरना, ये थर्ड टॉप सीक्रेट है इस जीवन का। जस्ट वर्क ऑन दीज थ्री, नहीं किया है तो करके देखो, एक दिन करके देखो, जस्ट बी ऑन द फ्रूट्स एंड देन सी। विचार, भोजन परिवर्तन होते ही विचार बदल जाते हैं सारे, जो एग्रेशन था, जो नमक से या तेल से या पके हुए भोजन से, नमक मसालों से एक उत्तेजना रहती है इंद्रियों में, वो उत्तेजनाएं शांत हो जाती है। यह शरीर केवल फ्रूट्स के लिए डिजाइन है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ भी डालो, बॉडी टॉक्सिन से ही भरती है। यह हमारा अपना, और इसकी ढेर सारी किताबें जो हमने पढ़ी डाइट के संबंध में, 200-300 जितनी किताबें हैं, हर प्रकार का डाइट फॉलो करके देखा, लिक्विड एरियन करके देखा, 10 टाइम्स मील करके भी देखा, जिम ज्वाइन किया तो जिम वालों ने कहा बहुत खाओ, प्रोटीन के डब्बे लाए, सब किया, और ही बीमार पड़े, सब करके देखा, जो कर सकते थे, सॉलिड फूड, ये फूड, वो फूड, और सारो करते करते जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं वो ये है, फलाहार, संपूर्ण आहार। प्रोटीन कहां से मिलेगा, प्रोटीन कहां से, हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए जो फ्रूट से मिलता है। B12 कहां से आएगा, विटामिन डी कहां से आएगा, ये फ्रूट्स में नहीं है, पर जैसे उस पे जाते हो शरीर अपने आप ही प्रोड्यूस करता है। सारी बीमारियों से मुक्ति, शरीर में कोई दर्द नहीं। एक बार फ्रैक्चर हो गया था, कोई दवाई नहीं ली थी, छोटा सा फ्रैक्चर था, पर उसके साथ अपने आप ही ठीक हो गया वो। एक्सपोज द बॉडी टू द सनलाइट, ईट द सन, बी ऑन द फ्रूट्स, बी ऑन वॉटर, दीज आर द बेस्ट डाइट 3। तो ये 3 जीवन के रहस्य है, पहला परमात्मा प्रेम, दूसरा अखंड ब्रह्मचर्य, और हम चाहेंगे यहां इस भूमि में आप सब आए हैं कुछ प्रतिज्ञा लेकर जाना, क्योंकि यहां एक संगठन की शक्ति है, यहां इस वातावरण में ऐसी प्रतिज्ञा लेना, और फिर कीप ऑन वॉटरिंग दैट सीड ऑफ रेजोल्यूशन एंड देन सी द चेंज। नहीं तो यहां आए, लेक्चर सुना, सब किया, पिकनिक हो गई, मनोरंजन, दिस इज नॉट मनोरंजन। ये नियति ने एक अवसर दिया है, इतिहास करवट बदल रहा है, लेट दिस बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, वेदर इट इज फूड, वेदर इट इज ब्रह्मचर्य, सारे डिस्टर्बेंसेस जो रिलेशनशिप्स में है कहीं ना कहीं लस्ट की वजह से है, इंप्यूरिटी की वजह से है। बिगिन अ न्यू लाइफ फ्रॉम हियर। अच्छा, ॐ शान्तिः।